इकबाल और नूर दोनों अस्पताल के वेटिंग एरिया में चुपचाप बैठे थे। सामने सफ़ेद दीवारें, धीमी रोशनी और मशीनों की हल्की हल्की आवाज़, सब कुछ मिलकर माहौल को और भी भारी बना रहा था। उनके साथ इकबाल की फूफी की बेटी भी बैठी थी, जिसकी आंखों में चिंता साफ छलक रही थी। तीनों की निगाहें बार बार आईसीयू की ओर उठ जातीं, जहां फूफी की हालत ने सबको बेचैन कर रखा था। लेकिन इस बेचैनी के बीच भी इकबाल का मन कहीं और उलझा हुआ था। उसका ध्यान बार बार नूर की तरफ चला जाता। वो जानता था कि इस हालात में नूर का फूफी के घर रुकना ठीक नहीं है। उसके दिल में एक ही जिद थी, किसी भी हालत में नूर को अपनी फूफी के घर वापस नहीं भेजना है। काफी देर सोचने के बाद उसने जेब से मोबाइल निकाला और फरीद खान को फ़ोन मिला दिया। अस्सलामु अलैकुम, इकबाल की आवाज़ में थकान साफ छलक रही थी। उसने फरीद खान को पूरी बात विस्तार से बताई, कैसे फूफी को अचानक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, कैसे पूरा परिवार वहीं जमा है और ऐसे में नूर का वहां रुकना अब मुमकिन नहीं रहा। बात करते करते उसने अपनी परेशानी खुलकर रख दी। मैं चाहता हूं कि नूर किसी यूनिवर्सिटी के पास लड़कियों के हॉस्टल में रह सके, उसने कहा, अगर आपके पास कोई भरोसेमंद पता हो तो। दूसरी तरफ से फरीद खान ने इत्मीनान से जवाब दिया, इकबाल, इतनी जल्दी में सही हॉस्टल मिलना मुश्किल है। तुम एक बार घर आ जाओ, फिर आराम से देखेंगे। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी बन सकता है। फिर उन्होंने कहा, मैं ड्राइवर को भेज देता हूं, तुम दोनों आराम से घर आ जाओ। फोन रखते ही इकबाल ने हल्की सी राहत की सांस ली, लेकिन दिल का बोझ अब भी कम नहीं हुआ था। उधर फरीद खान जब घर पहुंचे तो ड्राइंग रूम में अरमान और रेहान रेहाना बेगम के पास बैठे हुए थे। माहौल में हल्की सी खुशी घुली हुई थी। रेहान उत्साह से उन्हें बता रहा था कि जिस प्लॉट की डील चल रही थी वो आखिरकार उन्हें मिल गया है, और वो भी उसी प्राइस पर जैसा हम चाहते थे, रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। फरीद खान ने दोनों बेटों को मुबारकबाद दी। अच्छा किया, उन्होंने कहा, अब आगे की प्लानिंग सोच समझ कर करनी होगी। बातों बातों में अरमान ने जिक्र किया कि वो जल्द से जल्द उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहता है। उसी वक्त अरमान के फ़ोन की स्क्रीन जगमगा उठी। माहिरा का कॉल था। उसने सबकी तरफ एक नज़र डाली और चुपचाप फ़ोन उठाकर बाहर चला गया। अरमान के जाते ही फरीद खान अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने रेहान से कहा, ड्राइवर को अस्पताल भेज दो, इकबाल और नूर को लेकर आना है। रेहाना बेगम ने हैरानी से पूछा, अचानक क्या हुआ? फरीद खान ने गहरी सांस लेकर बताया, इकबाल की फूफी अस्पताल में दाखिल हो गई हैं, पूरी फैमिली वहीं है, ऐसे में नूर का वहां रुकना ठीक नहीं। इकबाल हॉस्टल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने उसे पहले घर आने को कह दिया है। रेहान ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, डैड, ड्राइवर तो आज जल्दी चला गया है। फिर तुरंत बोला, कोई बात नहीं, मैं फैजान को भेज देता हूँ। फरीद खान ने सिर हिलाकर हामी भरी। सुबह इंद्र जब विक्रांत के घर पहुंचा था तब उसे पूरा भरोसा था कि इस बार जैसिका साथ चल देगी। चलो जैसिका, आज तुम्हें साथ ले चलते हैं, इंद्र ने हल्के से अंदाज में कहा, लेकिन विक्रांत ने बात को वहीं रोक दिया, नहीं आज नहीं, कुछ काम है। कोई बात नहीं, जैसे ही फ्री होंगे हम दोनों खुद आ जाएंगे, तुम्हें उसे लेने आने की जरूरत नहीं। उसके शब्द सीधे थे मगर आंखों में साफ दिख रहा था, वो जैसिका को अकेले कहीं भी जाने नहीं देना चाहता। इंद्र मुस्कुरा दिया, लेकिन दिल में खींच थी। वो समझ गया था, अगर जैसिका जाएगी तो विक्रांत उसके साथ ही आएगा, और यही वो चीज़ थी जो इंद्र नहीं चाहता था। वापस लौटकर उसने आर्यन से सलाह ली, अगर जैसिका को लाना है तो विक्रांत को उससे अलग करना पड़ेगा। आर्यन ने बिना ज्यादा सोचे कहा, रात का इंतजाम करो, दो मिनट का खेल होगा। रात गहरी हो चुकी थी, गली में सन्नाटा था, बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क पर फैल रही थी। इंद्र की गाड़ी विक्रांत के घर के ठीक सामने नहीं बल्कि थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसने जानबूझकर जैसिका को फ़ोन नहीं किया, सीधे विक्रांत का नंबर डायल किया। विक्रांत, बस दो मिनट के लिए जैसिका को बाहर भेज दो, मैं घर के बाहर हूँ। विक्रांत चौकन्ना हो गया, क्या बात है इतनी रात को? इंद्र ने लापरवाही से कहा, भाई अपनी बड़ी बहन के लिए गिफ्ट लाया हूँ, जल्दी जाना है, जैसिका के हाथ में पकड़ा दूंगा, उसे कुछ मत बताना। कोई बात नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ, तुम जैसिका का गिफ्ट मुझे दे देना। विक्रांत को झुंझलाहट हुई, कमाल करते हो, अपनी बीवी को गिफ्ट देना है तो खुद ला कर दो। इंद्र ने ऐसे हंसकर बात टाल दी जैसे उसे किसी बात से फर्क ही ना पड़ता हो। अरे ठीक है, भेज दो, नहीं तो दे दो, मैं चला जाऊंगा। विक्रांत ने एक पल सोचा, घर के बाहर है, दो मिनट में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, उसने जैसिका से कहा। बस दो मिनट, उसने पूछा। हाँ जल्दी आ जाना, विक्रांत ने कहा और खुद लॉन में ही रुक गया। जैसिका बाहर निकली, इंद्र गाड़ी में ही बैठा हुआ था। जैसिका चलती हुई गाड़ी के पास आई तो इंद्र ने शीशा नीचे किया, मेरे साथ इधर आओ, उसने ऐसे कहा जैसे ये कोई मामूली सी बात हो। जैसिका ने हैरानी से पूछा, क्या है, कौन सा गिफ्ट है जो गाड़ी में बैठे बैठे ही देना है? जो भी देना है यहीं दे दो। इंद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस दो मिनट के लिए आओ, यहीं हाथ में दे दूंगा। जैसिका को अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा दो मिनट ही तो है। वो गाड़ी के पास आई और झुककर अंदर देखने लगी। उसी पल इंद्र ने झट से दरवाजा खोला, जैसिका को अंदर खींचा और गाड़ी लॉक। जैसिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही इंद्र ने एक्सेलरेटर दबा दिया, गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। इंद्र, ये क्या कर रहे हो? जैसिका की आवाज कांप रही थी, लेकिन इंद्र ने बिना कुछ कहे गाड़ी भगा दी। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ये सब देख चुके थे। जैसे ही विक्रांत बाहर आया उन्होंने कहा, साहब इंद्र तो चला गया, अभी अभी गाड़ी तेजी से निकली है।
विक्रांत का दिल धक से रह गया। क्या उसने कहा था वापस आने वाला है? उसने तुरंत कहा, जल्दी गाड़ी निकालो। लेकिन इससे पहले कि उसकी गाड़ी बाहर निकलती, पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। नीली लाल बत्तियों वाली पुलिस की गाड़ी गेट के अंदर आ चुकी थी। विक्रांत कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक पुलिस अफसर गाड़ी से उतरा। विक्रांत कपूरिया, आपको गिरफ्तार किया जाता है। विक्रांत सन रह गया। क्या, किस लिए? पुलिस अफसर ने एक एक करके आरोप गिनाए। स्मगलिंग के लिए, नशे की सप्लाई के लिए, जगत राठौर और उनकी पत्नी का एक्सीडेंट करवाकर मर्डर कराने के लिए। विक्रांत को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। ये सब झूठ है। लेकिन उसके पास न भागने का रास्ता था न बचने का। पुलिस ने हथकड़ी लगाई। उसी पल उसे समझ आ गया, इंद्र जान बूझकर जैसिका को ले गया था। ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। आर्यन ने उसके भागने के सारे रास्ते पहले ही बंद कर दिए थे। पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। हर कमरे की तलाशी ली गई, सबूत निकलते गए और विक्रांत को पुलिस ले गई, शायद हमेशा हमेशा के लिए। उधर गाड़ी में जैसिका रो रही थी। ये सब क्या है इंद्र, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने भारी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम जानती हो या नहीं, लेकिन भाई और भाभी के मर्डर के पीछे उसी का हाथ था। उसी ने एक्सीडेंट करवाया था। जैसिका सिसक पड़ी। मैं नहीं चाहता था कि गिरफ्तारी के वक्त तुम उसके साथ रहो। वे आर्यन के घर पहुंचे। वहां पहले से सब इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी आर्यन के घर के अंदर दाखिल हुई, लॉन में बैठे हुए आर्यन, सानवी, शिव, मेहता, कीर्ति और रिया, सबकी नजरें एक साथ उसी ओर उठ गईं। वे सब पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि विक्रांत गिरफ्तार हो चुका है। जैसे ही जैसिका और इंद्र गाड़ी से उतरे, सबके चेहरों पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई, सुकून की, राहत की। सानवी सबसे पहले आगे बढ़ी। चलो जैसिका, अंदर आ जाओ। जैसिका ने चारों तरफ देखा। यही वे लोग थे जिन्हें वो कभी अपना दुश्मन समझती थी। सब हॉल में आकर बैठ गए। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर जैसिका की आवाज टूटी हुई थी। आप सब, जिन्हें मैं अपना दुश्मन मानती रही, आप सब ने मुझे बचाने की हर कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और विक्रांत,
जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वो इतना गलत इंसान निकला। मुझसे जिंदगी में बहुत बड़ी गलती हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जैसिका, मुझे लगता है कि अब इस बात को सोचने से बेहतर है कि तुम आगे क्या करना चाहती हो। सानवी ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। जैसिका ने सिर हिलाया। सही कह रहे हो आप लोग। थोड़ी देर सब बैठे रहे। कोई सवाल नहीं, कोई ताना नहीं, बस साथ। कुछ देर बाद एक एक करके सब अपने घर जाने लगे। इंद्र ने जैसिका की ओर देखा। चलो। वो उसे अपने पेंट हाउस ले आया। दरवाजा बंद होते ही जैसिका वहीं सोफे पर बैठ गई, थकी हुई, टूट चुकी। इंद्र ने एक ग्लास पानी उसकी तरफ बढ़ाया। आज बहुत कुछ बदल गया है, जैसिका ने धीमी आवाज में कहा। हाँ।